हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। और जैसे ही वो मल्लिका को मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़ा, काली शक्तियों के महागुरु गुस्से से उसकी ओर घूरने लगे। क्या तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई थी? हमने कहा ना, ये काली शक्तियों की सदस्य है। इसको मुखाग्नि देने का अधिकार अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा है। ऐसा कहकर काली शक्तियों के महागुरु अपने मुंह से अंगारे बरसाने लगे और करिश्मा व अमरेंद्र दूर जा गिरे। तभी अचानक करिश्मा को तारापरी का ख्याल आया। क्यों ना वो तारापरी का आह्वान करे, क्योंकि तारा एक परी थी और वो आसानी से काली शक्तियों के महागुरु का मुकाबला कर सकती थी। भले ही वो उन्हें हरा नहीं पाती, लेकिन उसके पास जिन अंश था जो जरूर कुछ न कुछ करता, इसलिए उसने तुरंत तारापरी का आह्वान करना शुरू कर दिया। जैसे ही करिश्मा ने तारापरी का आह्वान करना शुरू किया, तारापरी को इस बात का एहसास हो गया, लेकिन वो उस वक्त पूरी तरह से मजबूर थी। वो भला करिश्मा की मदद करने के लिए कैसे जा सकती थी? वो करिश्मा की मदद करने के लिए सोच ही रही थी कि तभी अचानक सोनल परी उसके पास आ गई। सोनल परी ने तारा को वहां आकर जो भी काली परी ने किया था वो सारी बातें बताईं। सोनल परी को इस तरह उदास देखकर तारा को पता चला कि अक्षत खुराना 7 घंटे के अंदर अंदर एक बार फिर एक बूढ़ा इंसान बनने वाला था। अक्षत ने सोच लिया था कि इस बार वो अपनी जान दे देगा, लेकिन इस तरह की जिंदगी वो बिल्कुल नहीं जिएगा और तीसरी बार तो वो काली परी की हवस का शिकार नहीं बनेगा। सोनल ने ये सारी बातें तारापरी को बता दी। तारापरी मोटे मोटे आंखों में मोतियों के साथ सोनल की ओर देखकर कहने लगी, उस काली परी ने बहुत बना जाल बिछाया है। उसने मेरे अंदर अपनी कुछ काली शक्ति का अंश डाल दिया है, जिसकी वजह से मैं अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगी। इतना ही नहीं, इस वक्त करिश्मा को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। सोनल, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। काली परी से अक्षत को कैसे बचाना है, इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे, लेकिन तुम्हें उससे पहले करिश्मा की मदद करनी होगी। ऐसा कहकर तारापरी ने अपनी कुछ मंत्र सोनल परी को सिखा दिए, क्योंकि उन मंत्रों का उच्चारण तारापरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी शक्तियां अभी के लिए खत्म हो गई थीं। लेकिन सोनल परी जरूर उन मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी, इसलिए तारा ने जल्दी ही सारे मंत्र सोनल परी को सिखा दिए और उससे कहा कि वो जल्द से जल्द वहां से काले जंगलों की ओर चली जाए और वहां जाकर वो करिश्मा की मदद करे, और वहां जाकर उसकी सबसे पहली प्राथमिकता मल्लिका के बूढ़े शरीर को मुखाग्नि देना होगा। जैसे ही सोनल ने ये सुना कि तारापरी ने बोला है कि वो अक्षत के बारे में जरूर कुछ सोचेगी, तो उसे इसी बात की तसल्ली हुई, इसलिए वो जल्दी ही गायब होकर तारापरी की बात मानते हुए काले जंगलों में चली गई। और जैसे ही उसने ये देखा कि किस तरह से काली शक्तियों के महागुरु ने करिश्मा और अमरेंद्र को अपना निशाना बनाया है और वो लगातार उन पर हमला कर रहे हैं, तब सोनल परी ने अमन का रूप ले लिया, क्योंकि वो अमरेंद्र के सामने अपने सोनल परी के रूप में नहीं जाना चाहती थी। तारा ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वो अमन का रूप लेकर ही वहां जाए, और साथ ही साथ करिश्मा को इस बात के बारे में अच्छी तरह से समझा दे कि अमरेंद्र अमन के सामने किसी बात का कोई जिक्र ना करे। जैसे ही सोनल परी वहां गई और उसने वहां जाकर ये देखा कि काली शक्तियों का महागुरु उस वक्त करिश्मा और अमरेंद्र दोनों पर हमला करने में व्यस्त था। इतना ही नहीं, कितने ही सारे जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, कीड़े मकौड़े, जंगल के छोटे से छोटे जानवर ने भी उन्हें घेर रखा था। तब इस बात का फायदा उठाते हुए सोनल परी ने जल्दी ही मल्लिका को मुखाग्नि दे दी, और जैसे ही मल्लिका का शरीर धुआं धुआं करके वहां जलने लगा, काली शक्तियों का महागुरु जोरों से चीखा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और काली शक्तियों के महागुरु के ताप से जितने भी कीड़े मकौड़े जंगल से वहां आए थे, एक एक करके सभी गायब होने लगे, और सोनल परी, जो कि अमन का रूप लेकर वहां आई थी, मल्लिका के शरीर को मुखाग्नि देने के बाद वहां से गायब हो गई। इसलिए अमरेंद्र सोनल परी यानी अमन के रूप को वहां नहीं देख पाए और वो सीधा तारापरी के पास आ गई, और जो कुछ भी जंगल में हुआ था वो सारी बातें उसने उसे बता दी। अब जैसे ही करिश्मा, जो सोनल परी को मल्लिका के शरीर को मुखाग्नि देते हुए देख चुकी थी, वो मन ही मन में उसका शुक्रिया अदा करने लगी, और तभी काली शक्तियों का महागुरु करिश्मा और अमरेंद्र की ओर देखते हुए बोला, भले ही तुम लोग आज जीत गए हो, लेकिन याद रखना, काली शक्तियों के महागुरु से जीत पाना इतना आसान नहीं है, और शायद तुम भूल रहे हो, अमित का एक अंश मेरे पास है और मैं उसे इतना खतरनाक बनाऊंगा कि वो तुम्हारे यानी कि सफ़ेद जिन्नातों के वंशजों का अंत कर देगा, वो भी बहुत जल्द। अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो बचकर दिखाओ। वैसे भी जिन्नातों के वंशज के मरने का समय नज़दीक आ रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे ही इस बार पूर्णिमा का चांद पूर्ण होगा और जिस वक्त आकाश में कुछ ज़्यादा ही रोशनियाँ होंगी, उस वक्त जिन्नातों का वंशज पैदा होगा, और याद रखना, जब जिन्नातों का वंशज पैदा होगा, ठीक उसी वक्त हम उसकी जान ले लेंगे। ऐसा कहकर करिश्मा और अमरेंद्र को धमकी देते हुए काली शक्तियों का महागुरु भी वहां से गायब हो गया। अब करिश्मा और अमरेंद्र ने काली शक्तियों के महागुरु के जाने के बाद राहत की सांस ली। तब अमरेंद्र करिश्मा से कहने लगा, आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे और मल्लिका के शरीर को मुखाग्नि किसने दी? तभी करिश्मा अमरेंद्र की ओर देखते हुए कहने लगी, शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे आसपास कितने सारे जिन हमारी मदद करते हैं। क्योंकि हम सफेद जिन्नों के वंशज हैं तो इसलिए जरूर किसी न किसी जिन ने हमारी मदद की होगी। चलो इसके बारे में हम जिन्नातों की दुनिया में जाकर पता लगा लेंगे। अभी मुझे लगता है कि हमें इस काले जंगल से निकलना चाहिए। जैसे ही करिश्मा ने ये कहा, अमरेंद्र भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और जल्दी ही वो दोनों वहां से गायब होकर अपने बंगले की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर सोनल परी ने जैसे ही तारा परी को ये बताया कि उसने जंगल वाली समस्या ठीक कर दी है, अब वो उसकी मदद करे, तब तारा कुछ सोचने लगी। देखो सोनल, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अक्षत के साथ कुछ ज्यादा ही आत्मीय हो गई हो, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि काली परी का वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। अगर उसने अक्षत के साथ उसकी उम्र चुराने के इरादे से शारीरिक संबंध बनाए हैं तो इसलिए वो उसमें कामयाब होकर रहेगी। लेकिन हाँ, हमारे महाकुलगुरु यानी कि हमारे परीलोक के महागुरु ही हैं जो अक्षत को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही काली परी को वरदान दिया था। जैसे ही सोनल परी ने ये सुना, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन तारा, पृथ्वी पर मैं कुलगुरु को कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ? तुम अच्छी तरह से जानती हो, परीलोक में जब हमें कुलगुरु को प्रसन्न करना होता है तो हमें नित्य कार्यक्रम करना होता है, और लगातार कितने ही दिनों तक, जब तक कुलगुरु प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक हमें वो नित्य कार्यक्रम जारी रखना होता है। लेकिन अब क्या होगा? अब पृथ्वीलोक पर मैं किस तरह से कुलगुरु को बुला सकती हूँ? तभी तारा ने सोनल की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अब सीधा रानी माँ का आह्वान करना होगा और रानी माँ तीन परियों को तुम्हारे पास भेजेगी, और उसके बाद तुम्हें एक ऐसी जगह जहाँ पर कुलगुरु आ सके वहाँ जाना होगा, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि अमन का खूबसूरत बगीचा होगा जहाँ पर जिन महाराज समाधि लिए हुए हैं। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, सोनल पूरी तरह से हैरान थी। लेकिन तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चला? और कुलगुरु तो पृथ्वी पर कभी भी नहीं आएंगे, उन्होंने पहले ही बताया है कि उन्हें पृथ्वी पर जाना पसंद नहीं है।
तभी तारा सोनल परी की ओर देखते हुए कहा, भले ही कुलगुरु को पृथ्वी पर आना पसंद नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से की गई तपस्या, सच्चे दिल से किया गया आवाहन कभी भी खाली नहीं जाता, तो इसीलिए जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम वो करो और कुलगुरु को प्रसन्न करने के लिए नित्य कार्यक्रम का आयोजन करो। तब सोनल को मन ही मन में थोड़ी सी तसल्ली हुई। लेकिन 7 घंटे बाद अक्षत खुराना की उम्र कम हो जाएगी, फिर उसके बाद वो अपनी जान देने की बात कह रहा है। तभी तारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें अक्षत की जान किसी भी कीमत पर जाने नहीं देनी है, तुम्हें अक्षत को भी अपने साथ बगीचे में ले जाना होगा और उसे वहीं बिठाकर उसी के सामने नित्य कार्यक्रम करना होगा, ताकि कुलगुरु जब वहां आए उनकी दिव्य दृष्टि अक्षत पर पड़े तो अक्षत पूरी तरह से ठीक हो जाए। तारा की बात सुनकर सोनल परी को उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी और जल्दी ही तारा परी के कहने के मुताबिक उसने रानी माँ का आवाहन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते रानी माँ वहां आ गई। रानी माँ के वहां आते ही तारा परी ने जो कुछ भी सोनल परी को समझाया था वही सोनल परी ने रानी माँ से कह दिया। रानी माँ ये सुनकर कि काली परी ने अक्षत के साथ किस तरह से एक बार फिर हद पार की है, वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गईं। वो तो खुद शर्मिंदगी के बोझ से खुद को आज़ाद करना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने भी सोनल परी की मदद करने का फैसला कर लिया और परीलोक से रीत परी समेत 2 और परियों को उन्होंने पृथ्वीलोक भेजने का फैसला कर लिया और उन परियों को अच्छी तरह से समझा दिया कि उन्हें पृथ्वीलोक पर जाकर किस तरह से नित्य कार्यक्रम शुरू करना है और कुलगुरु को प्रसन्न करना है। वहीं सोनल परी ने जल्दी ही अक्षत खुराना के पास वापस जाकर उसे सारी बातें समझानी शुरू कर दी और उसे बता दिया कि वो अपनी जान देने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, और रही बात 7 घंटे की, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। जैसे ही सोनल परी ने ये कहा, अचानक से अक्षत की आंखों में खुशी की चमक दिखाई देने लगी। मैं ठीक हूँ या ना हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे केवल इसी बात की खुशी है कि मैं अपने अंतिम दिनों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। अब तो सोनल परी और भी ज्यादा भावुक हो गई और उसने आगे बढ़कर अक्षत को गले से लगा लिया और अक्षत को थोड़ा सा बेहतर महसूस कराने के लिए उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए और धीरे धीरे वो अक्षत को किस करने लगी। वहीं अक्षत अपनी मोहब्बत सोनल को इतने करीब पाकर खुद को रोक नहीं पा रहा था और वो भी उसके आगे बढ़कर जोर शोर से किस करने लगा और जल्दी ही दोनों धीरे धीरे भावनाओं में बहने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे के कपड़े अलग कर पाते और एक दूसरे के प्यार में आगे बढ़ पाते, अचानक से अक्षत को वो सब कुछ याद आ गया जो उसने काली परी के साथ किया था। इसलिए उसने सोनल को तुरंत अपने आप से दूर कर दिया और कहने लगा, मैं अब आपके लायक नहीं रहा, मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा कहकर उसने सोनल को लगभग धक्का दे दिया। अब तो सोनल परी बहुत ही ज्यादा निराश हो गई और थोड़ा सा आगे बढ़कर उसने अक्षत खुराना का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में ज्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी आंखों में देखते रहो। जैसे ही सोनल ने ये कहा, अक्षत हैरान था और जल्दी ही उसने सोनल परी के कहने के मुताबिक उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया और अचानक से सोनल की आंखों में देखते ही देखते उसकी आंखों में से कुछ रंग बिरंगी सी रोशनी बाहर निकलने लगी और अचानक से देखते ही देखते अक्षत और सोनल परी साथ साथ वहां से गायब हो चुके थे। क्या सोनल परी अपनी मोहब्बत अक्षत खुराना को बचा पाएगी? क्या वो काली परी के वरदान का कोई तोड़ निकाल पाएगी? क्या वाकई कुलगुरु प्रसन्न हो जाएंगे और अक्षत को जीवन दान देंगे? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।